आधुनिकता बोध की पहली कहानी का कहानीकार प्रेमचंद। प्रेमचंद मूलतः पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों की उपज थे। पुनरुत्थानवादी भारतीय परंपरा का आधार जो सुधारवाद या समन्वयवाद था, वही प्रेमचंद की कहानियों में भी प्रधान रूप से व्यक्त हुआ। किंतु प्रेमचंद की कहानियों का निकट से अध्ययन करने से पूर्व उस पूरे साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ का अध्ययन कर लेना आवश्यक है जिसमें प्रेमचंद की कहानियाँ और स्वयं प्रेमचंद स्थित थे। प्रेमचंद हिंदी के पहले कथाकार थे जिन्होंने कथा संबंधी इस प्रचलित मान्यता को पूरी तरह ठुकरा दिया था कि कथा मात्र मनोरंजन का वाहक है। वह कथा साहित्य को एक गंभीर तथा दायित्वपूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा करके आए थे और जैसा कि उन्होंने अपने साहित्यिक विचारों में व्यक्त भी किया था कि मनोरंजन करना विदूषकों तथा मदारियों का काम है, कथाकार का नहीं। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में कहानी को इसी रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। सन 1920 के आसपास जब प्रेमचंद ने उर्दू से हिंदी में कहानियां लिखना आरंभ किया तो उनकी प्रारंभिक कहानियाँ उर्दू कहानियों का रंग, मिजाज, तेवर लेकर आई जिनमें पुनरुत्थानवादी सुधार तथा समन्वय भावना भी शामिल थी। प्रेमचंद ने इस रूप में अपनी कहानियों के लिए जो कथा फलक चुना वह अपनी व्यापकता की दृष्टि से आज भी कहानीकारों के लिए एक चुनौती है। जिस प्रकार पुनरुत्थानवादी युग के सर्वश्रेष्ठ नेता गांधी ने अपना कार्यक्षेत्र गांव, शहर, निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग तथा व्यक्ति और परिवार सबको एक साथ बनाया, उसी प्रकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के लिए एक व्यापक कथा फलक चुना तथा गांधी की तरह ही मानवतावादी दृष्टि अपनाई। उस समय की वास्तविक स्थिति का परिचय हमें नेहरू जी के शब्दों में अच्छी तरह प्राप्त हो जाता है। कल कारखानों के मजदूर जिनकी संख्या महायुद्ध के कारण बेहद बढ़ गई थी, कुछ कुछ जगहों में ही स्थानीय रीति से संगठित हो गए थे और उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। किसान अपढ़, गरीबी और मुसीबत के मारे थे, बाघ के भरोसे दिन काटते और सरकार, जमींदार, साहूकार जो भी होते सब इन पर सवारी गाँटते और उनको चूसते थे। कैसे लगान का बोझ दिन व दिन बढ़ता जा रहा था और जिसके तले किसान कुचले जा रहे थे। किस तरह वे कहीं धूप में मशक्कत करते और अंत में देखते हैं कि उनकी सारी पैदावार उनकी नहीं है, उसे दूसरे उठा ले जाते हैं जिसका बदला उन्हें मिलता है ठोकरों, गालियों और भूखे पेट से। प्रेमचंद की कहानियाँ इसी परिवर्तित मानसिकता के आशावाद तथा क्रूर वास्तविकता के रचनात्मक संयोग से निर्मित हुई थी। प्रेमचंद की कहानियों का उचित मूल्यांकन देश की तत्कालीन दशा के इसी संदर्भ में किया जा सकता है। उस समय के पूरे उत्तर भारत की स्थिति थी जिसे प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में व्यक्त किया था और यही उनके आदर्शोन्मुख यथार्थवादी सिद्धांत का आधार थी। किसानों और मजदूरों के समानांतर ही मध्यवर्गीय वास्तविकता थी जो बहुत अलग नहीं थी। उसमें भी अवसरवादी, मक्कार, चापलूस तथा सरकारी नौकरी पर दांत लगाए चापलूस और स्वार्थी लोग भरे थे और कुछ लोग खासकर मध्यवर्ग की ऊपरी श्रेणी के मुट्ठी भर लोगों के में से थे जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन की बदौलत फूले फले थे और ऐसे परिवर्तन नहीं चाहते थे जिससे हमारी मौजूदा स्थिति और स्वार्थों को धक्का लगे। प्रेमचंद की कहानियाँ इसी स्थिति का प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों में एक और साहित्यिक परंपरा के रूप में पुनर्जागरण के प्रथम चरण की मिलीजुली मध्ययुगीन प्रवृत्तियाँ थीं और दूसरी ओर पंचरंगी जीवन दृष्टि लेकर आने वाले गांधी जी की नवीन मानसिकता तथा देश की तत्कालीन वास्तविकता थी। उस युग में लिखी गई प्रेमचंद की कुछ कहानियों को यदि सामने रखें तो इस स्थापना का विश्लेषण भलीभांति किया जा सकता है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी तथा नमक का दरोगा आदि कहानियों का कथ्य इसी सामाजिक स्थिति में हो सकता है। इस रूप में प्रेमचंद को दोहरा कार्य करना पड़ा, एक ओर कथा की पुरानी रूढ़ियों का भंजन और दूसरी ओर नवीन जीवन मूल्यों का निर्माण। इस दोहरे दायित्व के कारण ही कहीं कहीं प्रेमचंद की कहानियों में अचानक अतिरिक्त उत्साह और आशावाद दिखाई पड़ता है तथा कहीं कहीं इसी तरह अचानक आ जाने वाली भीषण हताशा और निराशा। यह उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी और बाद की कहानी कफन दोनों में इसी तरह अचानक उत्पन्न होती है। लेकिन प्रेमचंद की कहानियाँ न तो इस आशावाद और न इस हताशा के आधार पर पूरी तरह परिभाषित हो सकती हैं। उनकी कहानियों के तत्व एक दूसरे ही बंदों में ढूंढने होंगे जो उस समय देश के सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल और प्रेमचंद के अपने जीवन संघर्ष दोनों से जुड़े थे। प्रेमचंद ने कहानियों के माध्यम से अपने भीतर निरंतर विकसित होते हुए इसी संकट को व्यक्त किया था, क्योंकि वह मुख्यतः मानवतावादी और सुधारवादी थे। उनकी कहानियाँ कहीं न कहीं एक निश्चित नैतिक उद्देश्य से जुड़ी रहती थीं, और कारण जब उनकी इस नैतिकता तथा मानवतावादी मान्यताओं पर बाहरी स्थितियों के दबाव का असर होता है तो वे चरमराने लगती हैं। प्रेमचंद की परवर्ती कहानियों में इस चरमराहट की ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सकती है। प्रेमचंद के लिए लेखन का उद्देश्य और देश का भविष्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सामाजिक स्तर पर जो भी दबाव उन्हें अनुभव होता था, उसी का अनुभव वह लेखन के स्तर पर भी करते थे। इस बात का एक अच्छा खासा अनुभव पूस की रात में देखा जा सकता है। पूस की रात का गहरा अंधेरा, जाड़े के ठुठुरन और इन सब के बीच जलता हुआ एक धुंधला अलाव जो बार बार जलाने पर भी बुझ जाता है और केवल उस परिवेश के अंधेरे को धुएं से और गहरा कर देता है। यह सब कुछ कहानी के आंतरिक परिवेश का अंग होकर मानव हलकों की ही नहीं पूरे किसान वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत ट्रेजेडी को प्रतीकात्मक ढंग से कलामंद बना देती है। पूस की रात में प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियों का कोई आरोपी सुधारवाद अथवा आशावाद नजर नहीं आता। यह एक सीधी तथा मानविक व्यंजना है जो किसानों की तत्कालीन स्थिति को रचनात्मक स्तर पर पूरी क्षमता के साथ उद्घाटित करती है। इसी प्रकार प्रेमचंद की कहानियों में से जिनकी संख्या प्रायः 300 है, यदि छांट कर निकाला जाए तो प्रायः 2 दर्जन कहानियाँ ऐसी अवश्य प्राप्त होंगी जिनमें पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों से निर्मित सुधारवाद, समन्वयवाद, समझौतावाद कहीं भी आरोपित नहीं दिखाई देता और वे रचनात्मक दृष्टि से विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की कोटि में रखी जा सकती हैं। प्रेमचंद की ऐसी ही एक कहानी है ईदगाह, जो एक इसी नंगे वास्तविकता के दूसरे पक्ष का उद्घाटन इतनी ही तीव्रता से करती है। यह कहानी एक बच्चे के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है जो व्यवस्था विशेष के द्वारा दबोची गई ऐसी ही नंगी ट्रेजेडी को उजागर करती है। प्रेमचंद की कहानियों का मनोविज्ञान केवल मनोविज्ञान के लिए नहीं और न ही उनकी कला केवल कला के लिए है, बल्कि इनका सीधा संबंध एक नंगी और बेलौस वास्तविकता से होता था जो उतनी सशक्त रचनात्मकता से संयुक्त होकर बेजोड़ हो उठती थी। ईदगाह ऐसी ही कहानी है। प्रेमचंद की कफन कहानी अन्य कहानियों से नितांत भिन्न है। उनकी कहानी संसार में उसका संसार सर्वथा निस्संग और निरपेक्ष है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई पूर्ववर्ती धारणाओं के आगे प्रश्नचिन्ह लगा देती है। संभवतः यह उनकी अंतिम कहानी है जिसके लिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिवेश पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख आधुनिकता बोध की पहली और सही कहानी कफन में ठीक ही लिखा है। यह कहानी उनकी जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी है जिसके आगे बिंदु नहीं होता। 36 के बाद का कैलेंडर उनके जीवन में नहीं आया। यह उनके गोदान का वर्ष है, कफन का वर्ष है। यह उनके जीवन का ही कफन सिद्ध नहीं होती, उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्था, विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। यदि वे और जीते रहते तो और भी झूठे मूल्यों को कफन ओढ़ना पड़ता। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में जहाँ पीड़ा, आक्रोश, तकलीफ और तनाव दिखाई देता है, वहाँ उनकी भाषा गुस्सैल या विस्फोटक क्यों नहीं होती। रमेश दवे बेहद दिलचस्प अंदाज में इसका उत्तर देते हुए लिखते हैं कि प्रेमचंद की भाषा रचना की भाषा है, सृजन की भाषा है, किसी आंदोलन या मंच की भाषा नहीं। भाषा अपने तनाव खुद रचती है, अपनी सीधी या वक्र धारा खुद बनाती है और रचना के अंदर जाकर भाषा अपनी आंतरिक शक्ति से अधिक बोलती है। प्रेमचंद के पास हिंदी हो या उर्दू, दोनों उनकी रचना की आंतरिक शक्ति की भाषा है। अतः कहानी की भाषा में घोषणा पत्र की अपेक्षा प्रेमचंद से एक गलत अपेक्षा होगी। रमेश दवे आगे कहते हैं कि प्रेमचंद अपनी भाषा के उस स्पीत और विभ्राट कलेवर से निकलकर आज एक शब्द या शब्द ध्वनि बन गए हैं। यह शब्द किसी इतिहास की कंदरा से निकलकर आने वाला कोई आदि अक्षरों का समूह नहीं है। इस शब्द को प्रेमचंद्र ने मनुष्य के रूप में रचा है। गोर्की ने अपने एक निबंध में नए रूसी लेखकों को एक सलाह दी थी कि यदि रूस के सर्जक अच्छा साहित्य लिखना चाहते हैं तो वे पहले फ्रांस का साहित्य पढ़ें। शायद ठीक ऐसा ही आज के हिंदी कथा लेखक के लिए हिंदी में कहा जा सकता है। नएपन के नाम पर या फार्म या कंटेंट को तोड़ने की जिद करें या एब्सर्ड रचना के किसी तात्कालिक मुहावरे का दोहन करें, मगर इससे रचना अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आती हो यह जरूरी नहीं। यदि ऑथर हेली, मैकलिंस और अपडाइक आज भी हजार हजार पृष्ठ के उपन्यास लिखकर फार्म और कंटेंट दोनों को अपना रहे हैं और दुनिया के बाहर में जिनको पढ़ने का चस्का लग गया है, तो यह कहना भी ठीक नहीं लगता कि हर प्रयोग कुछ तोड़फोड़ कर ही किया जाए। प्रेमचंद ने अपने समय में मौजूद किसी भी सामाजिक आदर्श को अपना आदर्श बनाकर नहीं लिखा। उनके पास ईश्वर की सत्ता नगण्य है, धर्म के तमाम विश्वास नगण्य हैं, साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव नगण्य हैं। उनके पास समाज की मनुष्यता की सत्ता है, नैतिकता की सत्ता है, इसलिए उनकी रचना का सारा विस्तार मनुष्यता में होता है। मनुष्यता के बाहर जाकर जिम कार्बेट की तरह न कोई टाइगर हंट का एडवेंचर लिखते हैं और न आरवेल की तरह मार्क्सवादी मनुष्यत्व के विरुद्ध कोई एनिमल फॉर्म लिखते हैं।